إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فخش پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یہاں ہم ان آیات کا خلاصہ کر چکے. اگر ہم پورے سبق کو یہاں پر لا کر ایک خلاصے کے طور پہ دوبارہ دہرا لیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا. بات شروع ہوئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت سے. اس کے لیے حالات جو بنے اور بنائے گئے وہ سب چیزیں ہم نے سیرت کی روشنی میں دیکھ لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اب یہاں سے آگے کی چند آیات میں غیر مسلموں کے پلانز کا تذکرہ کیا ہے. ایک تو ہے فحاشی، اور یعنی ہر بندہ ہی اس کی زد میں آیا ہوا دکھتا ہے. لیکن اس آیت کو پڑھنے کے بعد جو احساس ہوا وہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر فحاشی پھیلانا ایک سازش ہے، اور لوگ بڑی پلاننگ کے ساتھ اس پر کام کر رہے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں، ان الذین یحبون، کچھ لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ فحاشی پھیلے. ان تشیع، شین یا عین، پھیلنا، پروموٹ کرنا، ایگزیجوریٹ کرنا، بڑھانا، تشخیر کرنا، برائیوں اور فواہش کے خلاف نفرت کی دیواروں کو گرانا جو اسلام نے پیدا کی ہیں، ان دیواروں میں رکھنا اندازی کرنی، ایسے جملے لوگوں کی زبانوں سے نکلوانا کہ لگے کہ اسلام بہت ہی سخت مذہب ہے، ایسی کتابیں لکھنا جس سے شہوت بھڑکے، ایسے گانے، ایسی فلمیں، ایسے ڈرامے جن سے واقعی دیکھنے والوں میں شرم و حیا کا جذبہ کمزور سے کمزور ہوتا جائے، اور وہ لوگ جو اپنے آپ پیسے کو اپنا دین بنائے ہوئے اور جو دنیا میں خود کو بڑا بنانا چاہتے ہیں، وہ مختلف طریقوں سے کہیں اشتہارات کے نام پر اور کہیں لٹریچر کے نام پر اور کہیں بزنس کے نام پر پوری پلاننگ کے ساتھ ایمان والوں کے اندر بے حیائی پھیلا رہے ہیں. فی الذین آمنو کو ہائی لائٹ کر لیں. ہم دوسروں کی بات نہیں کریں گے، ہاں ان کی کچھ باتوں کو سامنے رکھیں گے ضرور، لیکن غور طلب بات کیا ہے کہ کیوں ایمان والوں ہی میں فحاشی پھیلائی جائے. اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر سچا اسلام دنیا میں آ جائے، اگر مسلمان اپنے دین پر عمل کرنے والے بن گئے، تو ہمارے بہت سارے منصوبے ادھورے رہ جائیں گے. تو ہم دیکھیں گے کہ فحاشی کے کیا اثرات ہیں اور آج امت مسلمہ کس طریقے سے، انجانے طریقے سے، اس کا شکار ہوتی بھی دکھتی ہے. فحاشی کا عمل جو ہے، یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ قرآن پاک میں ڈسکس کیا گیا. اگر آپ پورے قرآن پاک کو سامنے رکھیں، مختلف پاروں کو، مختلف صورتوں کو سامنے رکھیں، تو جس چیز کو شرک کے بعد سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ فحش ہے. کہیں فحش کے نام پہ آیا، کامن برائیاں، لیکن کہیں الفحشاء یعنی زنا کے بارے میں آیا. انہی آیات میں آگے جا کے دوبارہ بھی بات آ رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر، جو کوئی اس کی پیروی کرے گا تو وہ تو اسے فحش اور بدی کا ہی حکم دے گا. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد ابدا، اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا تھا، یعنی ان چیزوں سے بچ نہیں سکتا تھا. وہی بچے گا جس پہ اللہ کا فضل اور رحم ہوگا. ولکن اللہ یزکی من یشاء، اور جسے چاہتے اللہ ہی پاک کرتا ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. یہاں ہم نے دیکھا کہ شیطان لیڈس ٹو فحش اینڈ منکر. امیجینیشن میں آتا ہے کہ ایک شیطان نما کوئی شخصیت ہے، چل رہی ہے اور لوگوں کو کہتا ہے میرے پیچھے آؤ، میرے پیچھے آؤ، اور اس کے پیچھے جانے والوں کی منزل کیا ہے؟ الفحشاء والمنکر. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو امت وسط بنایا. سورت آل عمران میں دو بار एक जिम्मेदारी का एहसास दिलाया, और वो क्या, कुन तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई। क्या काम है तुम्हारा? अपनी ज़िंदगी में जीना, अपने ही नफ़े नुकसान को तोलते रहना? नहीं, तामुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर, तुम लोगों को अच्छी बातों का हुक्म देते हो और बुरी से रोकते हो। अगर आप इस मनहज पे गौर करें ना, जो उम्मते मुस्लिमा को मिला, तो ऐसे लगता है कि मुसलमानों को क्लीनिंग का काम दे दिया, डिस्पोजल का काम दे दिया, गारबेज क्लीनिंग का काम दे दिया। आज दुनिया में बहुत सारी चीज़ों का शोर है। कभी कहते हैं पीने का साफ़ पानी चाहिए, लोगों को साफ़ पानी दो, उसके लिए बड़े बड़े फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाते हैं, दरियाओं और समंदरों के पानी को मुख्तलिफ मराहल से गुजार कर बिल्कुल फ़िल्टर किया जाता है। कभी कहते हैं नहीं, दवाओं को सही रखो, मिलावट से पाक दवाएं चाहिए। कभी कहते हैं पार्क्स, कभी कुछ कभी कुछ। यानी ह्यूमन राइट्स के नाम पे ऐसे लगता है कि बड़े ही मोहब्बत करने वाले हैं इंसानियत से लोग, जो लोगों को साफ़ सड़कें देना चाहते हैं, जो लोगों को साफ़ पानी देना चाहते हैं। कोई शक नहीं इसमें, बज़ाहर देखा जाए तो इसमें एक भी बात गलत नहीं है। लेकिन याद रखिए कि इस्लाम इस ज़ाहरी सफाई पे रोक नहीं देता, इस्लाम एक और सफाई भी चाहता है, और वो कौन सी है? सोच की सफाई, कल्ब की सफाई, रूह की सफाई, नज़रों की सफाई। और उसके लिए अल्लाह ताला ने साफ़ सुथरी तालीमात उतारी। ये आयत सूरत नूर की है, और सूरत नूर रोशनियों वाली सूरत है, जहालत और नफसानी ख्वाहिशात के अंधेरों से इंसान को निकालती है। अल्लाह ताला ने इस पूरी सूरत में और ख़ास तौर पे इन आयात को हाईलाइट करके अगर देखें, तो बताया क्या है कि उम्मते मुस्लिमा के पास वो ख़जाना है कि अगर वो इंसानियत के साथ शेयर करने लग गई, तो बेहयाई के गंदे जौहर ख़त्म हो जाएंगे, फहाशी के अड्डे बंद, जिनाकारी के अड्डे बंद, लोगों को इस तरह से अल्लाह के साथ ताल्लुक महसूस होगा कि वो गंदे चेहरों के साथ अल्लाह ताला की तरफ जाना गवारा ही नहीं करेंगे। लेकिन शर्त क्या है कि उम्मते मुस्लिमा को ख़ुद तो पता हो। इस आयत को अपने दिल पर लीजिए। आप बैठे हुए हैं और कोई आपके कान में आके कहे, आपको पता है कि कोई प्लानिंग कर रहा है, क्या भाई? वो आपके बेटे को अफ्यून का आदि करने की, चरसिया बनाना चाहता है, क्या लगेगा? हिल जाएंगे ना? आपको पता है कि किसी ने प्लानिंग कर ली है कि आपको अब जॉब से निकलवाए? आपको पता है कि आपकी बच्ची का रिश्ता तुड़वाने की तैयारियां? एकदम हम अलर्ट होते हैं ना, क्योंकि हमें अपनी ज़ात से बड़ा प्यार है, हमें माल से भी बड़ा प्यार है, बेटियों बेटों के रिश्तों और मुस्तकबिल से भी बड़ा प्यार है। यहाँ अल्लाह कह रहे हैं कि एक उससे भी बड़ी साजिश पकड़ी गई। आप कह सकते हैं कि इसका टॉपिक ही क्या है कि और साजिश पकड़ी गई। लोगों ने तो छुपा के बनाई थी, अल्लाह ने क़यामत तक रहने वाली किताब में ये पेश कर दिया कि कुछ लोग मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक प्लानिंग कर रहे हैं, और वो क्या? अंतशी अल्फाखिशतु फिल्लज़ीना आमनु, उनका टारगेट मुसलमान है। और ये उनका नहीं, असल में उससे भी पीछे जाइए तो शैतान का टारगेट है। वो देखता है कि जब एक शख्स कुफर या शिर्क कर लेता है, तो चले वो उसका नाम तो पहले ही जन्नत के रजिस्टर से निकल ही गया, अब इनके ऊपर और क्या मेहनत करूं? अब चलो उनकी तरफ जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और मोमिन कहते हैं, ताकि इनकी जन्नत इनसे दूर की जाए। तो याद रखिए कि फहाशी शैतान का सबसे तेज़ हथियार है, कुंद ना कहें, तेज़ हथियार है। ये है वो चीज़ जिस पे सबसे ज़्यादा शैतान काम करता है, ये है शैतान की सबसे ज़्यादा दूरअंदेश पॉलिसी के नस्लों को फहाशी में मुबतला कर दो। फहाशी के दो पहलू होते हैं, फुखश गंदगी, न्यूडिटी कह लें, इसको आप जो भी नाम देना चाहें, और या नियत। एक इसका होता है इनफरादी पहलू, फ़र्द पे उसका क्या असर आता है, यानी पर्सनल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं इन गंदी चीज़ों के। और दूसरा होता है मुआशरती पहलू, सोसाइटी में सोशल एस्पेक्ट्स क्या हैं। आप देखें कि फुखश को क्यों मना किया गया? फुखश इसलिए मना किया गया कि इसका असर सिर्फ उस गंदगी को करने वाले पे नहीं होता, बल्कि दूसरों पे भी इसका असर आता है। मसलन आप देखिए कि हम कहीं भी जाएं, मिसाल है कोई बाहर मेला है, आप उसमें जाते हैं, वहाँ हज़ारों लोग हैं, उनमें से किसी ने उससे पीछे वाली नमाज़ पढ़ी कि नहीं पढ़ी, हमें को फ़र्क पता चलेगा? यानी उसकी पिछली नमाज से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें पता भी नहीं चलेगा किसने पढ़ी है कि नहीं। उनमें से कौन बिदअत करता है नहीं पता चलेगा, बज़ाहर मैं उसके इफ़ेक्ट्स पे नहीं बात कर रही, जनरल बात कीजिए कि जो हमारी 5 वक्त की नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, किसी दूसरे को उसका डायरेक्ट कोई फ़र्क नहीं दिखता, लेकिन अगर उस मेले में कुछ लोगों ने स्लीवलेस शर्ट्स पहनी हुई हैं, बिकिनीज पहनी हुई हैं, उनके लो नेक गले हैं और ऐसे हैं कि जैसे देख के भी लगे कि उन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए, आप बताएं कि क्या उसका असर उस मेले में आए हुए बाकी लोगों पे पड़ेगा? ये है फहाशी का सोशल इफ़ेक्ट। ये हो ही नहीं सकता कि कोई फुहश हो और उसकी वजह से दूसरे बंदे पे फहाशी ना आए। आप कह सकते हैं ये मुतअद्दी बीमारी है, वायरल डिजीज़ है, एक को लगती है तो दूसरों को भी लगती है। क्योंकि अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को क्लीनिंग का काम दिया, ये लोगों की ज़ाहरी तहारत का भी इंतज़ाम करती है और कल्बी तहारत का भी। आप कह लें कि उम्मत मुस्लिमा की हैसियत इस वक्त एक डॉक्टर की है। अब अगर कोई डॉक्टर ही बीमारियों के ख़िलाफ़ ना रहे, वही जरासीम के बारे में नफ़रत छोड़ दे, तो आप बताइए कि वह दूसरों का इलाज कैसे करेगा? अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को कहा था कि तुम जाओ और तुम काम करो, अच्छे काम करो, लोगों को बताओ, लोगों को पता चल जाए, जहाँ से कोई मुसलमान गुजरे लोग समझे ये डॉक्टर है। अब होगा क्या कि जो किसी भी जगह गंदगी फैलाने वाले ना, ये बुराई फैलाने वाले, वो डॉक्टर को ही बदनाम करने लग जाए तो क्या होगा? वो इंसानियत का दुश्मन है। आज उम्मत मुस्लिमा पर जो इतने हमले होते हैं ना, जो लफ्ज़ मुसलमान नाकाबिले बर्दाश्त है, उसकी वजह ये है कि वो एक डॉक्टर है। और गंदगी फैलाने वालों को पता है कि अगर ये डॉक्टर भड़ते गए माशरे में, हम अपनी गंदगी नहीं फैला सकते, तो लिहाजा फहाशी को शौरी तौर पर फैलाने की कोशिशें की जाती हैं। और ये फहाशी ऐसे है जैसे आप घर के ट्रैश को सारे घर के अंदर फैला दें। बस लोग इस बात के ऊपर भी रहते हैं कि क्या करें जी, क्या हर्ज है। फिर कुछ लोग माशाल्लाह बाहर के मुल्कों में रहते हैं, फिर जब कभी जाते हैं सऊदी अरब, पाकिस्तान, किसी भी दूसरे मुल्क में जाते हैं और कहते हैं कि लो देखो ये ज़रा यहाँ भी सब कुछ होता है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो लोग खुल के करते हैं, बता के करते हैं, ये सारे छुपा के करते हैं। कभी सुनी आपने ये बात? बस लोग ऐसे होते हैं कि जो कोशिश करते हैं कि हम अपने मुल्कों में सेटल डाउन हो जाएं, दिल नहीं चाह रहा होता, वो सारी मराहत छोड़ने को दिल नहीं चाहता, लग्जरियस लाइफ के आदी हो चुके होते हैं। बहरहाल अब जब उनको कहा जाए जाएं, तो फिर वो अपने दिफा में जो बात कहते हैं वो यही कहते हैं, कहते हैं वहाँ भी सब कुछ हो रहा है, देखो ज़रा तुम्हें क्या पता, बाहर तो ये लोग काले बुरके पहन लेते हैं, अंदर खाते क्या होता है तुम्हें क्या पता, जाओ इनके घरों में देखो और तुम इनके दूसरे मामला देखो। इसका फ़र्क ज़रा थोड़ा सा सामने रखिएगा। आप देखिए कि अगर कोई शख्स जाए किसी जगह और वो कहे कि यहाँ गटर है, और देखो इन्होंने गटरों के ऊपर ढक्कन रखे हुए हैं, है ना मुनाफिक, इनको को सारे गटरों के ढक्कन खोल दें, देखो ना अच्छी बात है। और देखो फुला मुल्क वाले ये टॉयलेट में जाते हैं तो दरवाजे बंद करके नहाते हैं, बोला सबको पता है नहाना है तो खुलेआम नहाओ, क्या कहेंगे आप इसको? नहीं समझ आएगी ना। अब किसी के घर में जाएं और वो अपनी ट्रैश कैन को ला के डाइनिंग टेबल के पास रख दे, टॉयलेट बोल जो है वो ड्राइंग रूम में लगाओ, कैसा लगेगा भाई? क्या जरूरत, सब करते हैं इसको इस्तेमाल, भला आप इसको छुपा के दरवाजों में अंदर कर दो। ये तो बड़े मुनाफिक हैं कि ये टॉयलेट में जाके फारिग होते हैं, इनको चाहिए इधर लगाने। और रियली मैंने एक पिक्चर देखी, नाम नहीं लेती, कहीं आप भी ना देखने की कोशिश में चल पड़े वहाँ, लेकिन एक मुल्क था तो वहाँ एक रेस्टोरेंट बना है लेटेस्ट मॉडल का, पूरा रेस्टोरेंट जो है वो टॉयलेट है, जिन सीट्स पे बैठ के लोग खाना करते हैं वल्लाही बिल्कुल टॉयलेट की शक्लें हैं कुर्सियों की, जैसे ये जो WC होता है, फिर जो उसके अंदर आगे टेबल रखे हुए वो सिंक की तरह बने हुए हैं। देख के एकदम जब वो पिक्चर मैंने देखी तो मैंने कहा अस्तग़फ़िरुल्लाह, इतने लोग इकट्ठे फारिग हो रहे हैं। बाद में लिखा था वैरायटी स्टाइल, ये है ना, इन्नल्लज़ीना युहिब्बून अन तशी अल्फाखिशतु फिल्लज़ीना आमनू, गंदे काम करते हो तुम, चाहते हो कि कपड़े भी उतार दो इसलिए कि सबको पता है जिसम है सबका, सबको पता है पेट भी होता है, टांगे भी होती हैं, रान भी है, सीना भी हो, तब छुपाने की क्या ज़रूरत है? पता तो हमें लग गया कि ये है, तुम छुपाते हो। ऐसी गंदगी की चीज़ें आम करने वाले जब ये बातें कहते हुए दिखते हैं कि देखो वहां जाके तो सब कुछ छुपा होता है, तो इसकी मिसाल क्या कि शुक्र है छुपा हुआ है। देखिए बेहयाई फहाशी को खुलेआम करना क्या है, हया खत्म हो गई। अब तो हमें किसी की परवाह ही नहीं रही कि कौन क्या हमें कहता है। जो छुपा के करते हैं ये तो खुशी की बात है कि अभी उनके अंदर इस चीज़ की हिस मौजूद है कि हमारी ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, हमारी ये चीज़ बुरी है, हम कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। जब चीज़ें खुलेआम होने लगती हैं उसके बाद तो उसकी शर्म ही ख़त्म हो जाती है। तो लिहाजा इस्लाम ने यहाँ फहाशी का नज़रिया जो हमें दे दिया कि जैसे गंदगी है ना, ट्रैश, तुम इसको डी ग्लैमराइज करो, खोलो इसको। जिस तरह कोई गटरों के पानी को घर घर जाके पहुँचाए बाल्टियों में भर के कि क्या हरज है, ये तो बड़ा मुनाफ़त वाला काम है कि तुम गटरों को बंद कर दो, खोलो सारी गलियों में फैलाओ, घरों में आने दो, तो और बदबू फैलेगी ना। इसी तरह जिन मुआशरों में आप रोड्स पे निकलें और आपको कुछ नज़रें अपनी पाक ना रख सकें, कान आप पाक ना रख सकें, सोच आपकी पाक नहीं है, आप खबरें सुनने लगे तो आपकी नज़रें पाक नहीं है, कुछ भी देख लें चारों तरफ जो तूफान है वो सबको अच्छी तरह पता चलता है। तो वजह क्या है कि उस चीज़ को इतना आम कर दिया गया कि वो नज़रों को बुरी नहीं लगती। आप देखिए कि हर बात जो होती है ना वो बंदा सुनता है, फिर वो सुन के दूसरे को बताता है, फिर दूसरे को बताता है, फिर हजम नहीं होती, और उसके बाद वो बात जाके दूसरों के सुनाने वाला शख्स बिल्कुल ऐसा है कि जो कहीं जाके कोई गंदी चीज़ खा ले फिर वो उसको हजम ना, और जगह जगह कह करने लगे ये बातों का तूफान, ये गंदे वल्गर जुमले। कभी ड्रामों के जुमले सुना करें, कभी फिल्मों के डायलॉग सुने, कभी सास का मजाक देखें, कभी शादीशुदा लड़कियों औरतों का दूसरों के मर्दों में इंटरेस्ट लेना देखें। इतना ग्लैमराइज कर दिया, एक इसके ऊपर फितना और उठाते हैं, कहते हैं नहीं हम तो इसलिए करते हैं ये आप बुराइयाँ कि इसकी कशिश ख़त्म हो। कहीं भी किसी के ऊपर जिना हुआ, हमला हुआ, किसी के साथ को बुरा फेल हुआ, उसको लाके अखबारों में जीनत कर दिया, ड्रामों में दिखा दिया। वजह क्या, कहते हैं नहीं इससे फिर आम होगा, लोगों को पता चलेगा कि इस तरह के काम ना करो। आप इमेजिन करें अगर एक फिल्म है उसमें उन्होंने ये थीम लिया कि कुछ औरतें जो है उनको अगर दागदार कर दिया जाता है, अब उसको करने के लिए वो सारा काम करके दिखाया, क्या वो उस औरत की इज्जत करेंगे? जब वो सिनेमा हॉल से निकलेंगे क्या वो उस औरत की हमदर्दी और मोहब्बत के जज्बों से भरे होंगे या उनके दिल में जिंसी जज्बात उभर चुके होंगे? वो कैसे उस औरत की इज्जत करें जिसको आपने इतना सस्ता करके हर इश्तिहार की जीनत कर दिया? कोई चीज़ तो आपकी बिकती नहीं है औरत के इश्तिहार के बगैर। ब्लेड मर्द यूज़ करते हैं, पकड़ाती औरत है। चूहे मर्द मारे और दिखाते हैं वो औरतें मारती हुई। आप कॉकरोच मारने वाला अगर स्प्रे बेच रहे हैं तो औरत उसको कर रही, और कर भी इतनी अदा से रही होती हैं, इतनी खूबसूरत लगती हैं वो कॉकरोच मारती हुई। याद रखिए कि जितनी औरत को आम कर दिया गया ना उतना ख़ानदानी निज़ाम भी बिगड़ा। ये जो सोशल इफ़ेक्ट्स है ना उसमें ये भी है कि जितनी फहाशी आम हो रही है ना उतने घर टूट रहे हैं। एक मर्द जो दिन के 4-5 घंटे खूबसूरत बनी ठनी औरतों को मीडिया पे देखता है, इश्तिहार में औरत है, किचन में आप देखिए काम करते हुए जो औरतें दिखाते हैं, आप और मेरे में से कोई इस हाल में किचन में काम करती है? पहले तो आप साड़ी बंधें आधे पेट वाली, फिर बाजू भी खुले हों, मैचिंग मेकअप किया हो, जूड़ा भी किया हो आपने, और अदा से आप उसमें फ्राइंग पैन रखते हुए दिखें और घी का डिब्बा डालते देखें और उसके अंदर यूं आवाज़ें और आप सूंघें। अब ये मंजर कभी आपने किया घर में? अब जिस मर्द ने वो एडवर्टाइज जो देखी, अब जब घर आया तो बीवी के माथे पे तेवरी, गंदे कपड़े और वो पकौड़े, छोड़ वो उससे भी अच्छी चीज़ पकाती होगी, उसको जहर लगेगी। वो कॉकरोच मारती हुई कितनी प्यारी लगती है, और बीवी कभी खुदा ना खासा चींटी भी मार रही होगी तो कितनी वल्गर लग रही होगी। यकीन करें कितने घर टूटे आज के दौर में, जो लड़के मर्द और इवन लड़कियां भी, उनके जो जहन खराब हुए ना वो मीडिया से ये नाचती फुदकती तस्वीरें देखकर हुए। उनको पसंद ही नहीं आती, कैसे पसंद आए? आपकी बहन की सीधी सादी बेटी, आप बड़ी तारीफें कर रही हैं, बड़ी अच्छी लड़की है, जहाँ बिठाएंगे बैठ जाएगी, क्यों? मासी लेके आ रहे हैं हम घर में, क्या सोच के आप लेके आते हैं कि हमारी खिदमत करेगी? कोई बात नहीं, आ गई तो बस ठीक है, फिर जाएगी किधर? तो बेटा तो आपका मुंह नहीं लगा रहा, उसको तो अच्छा ही नहीं लग रही, क्योंकि उसको तो वो चाहिए जो चारों तरफ दिखती हैं। फिर माएँ रोती हैं, एक माँ रोए, हाय मेरे साथ जुल्म हो गया, मेरी तो पता नहीं किस्मत फूट गई, बड़े अरमानों से मैंने बहन की बेटी लाई थी, फिर क्या हुआ? वो कहता है मैंने रखनी नहीं। भाई क्या कहता है? वो कहते हैं फुलां चाहिए, किसी हीरोइन का नाम लेकर, देखो देखो किस्मत फूटी। मैंने कहा ये बताया कि वो हीरोइन दिखाई किसने थी उसको? जब हमारे मर्द और हमारी जवान बेटियां और हमारे जवान बच्चे घंटों के एतबार से ये नाचती फुदकती तस्वीरें देखते हैं, आप बताइए कि फिर उसको कैसे पसंद है हकीकत? और जो कल्चर फिल्मों में दिखाया जाता है, वल्लाही मैं सोचती हूँ इतना अनरियलिस्टिक और नॉन लिविंग कल्चर दिखाती हैं हमारी फिल्में। आप देखिए, हमारी एक फिल्म कोई भी जो आपने कभी देखी हो किसी जुबान में, उसको ले लें आज से 10 साल 15 साल, और आज की तो मुझे नहीं पता, आप देख लें, एक ही थीम है, लव स्टोरी। फिल्मों में क्या मैसेज देते हैं? लव स्टोरी। पूरी फिल्म जो है ना, हीरो और हीरोइन और विलन कौन है? लड़की का बाप और लड़के की माँ। पूरी फिल्म में क्या दिखा रहे हैं? वो नाच रहे हैं, फुदक रहे हैं, छुप छुप के मिल रहे हैं, रात को लड़की जा रही है, सारे शायकीन देखने वालों के दिल धड़क रहे होते हैं, अल्लाह करे जी खैर से भाग जाए, माँ की आंख ना ही खुले। सबकी हमदर्दी, जब पहुंच गए तो शुक्र है अब ये मंजिल पे पहुंची। वल्गर बातें करते, ये करते, उधर करते गाते, फिर वो चलो जिंदगी में नहीं मिले कोई बात नहीं, साथ मर जाते हैं, उसको भी मारो उसको मारो, दोनों गिरे, थोड़ी देर बाद दिखाते उनकी रूहें निकली ऊपर जाके मिल गई। ये मैसेज देती है ना आज की फिल्में। और एंड कहाँ होता है? फिर शादी हो गई, शादी के बाद की कोई बात नहीं फिल्में, यानी रोमांस, लव, खुशी का सारा ताल्लुक शादी से पहले, और शादी हुई तो खत्म, जाओ घरों में, अब तुम भी अपने घरों को देखो। हमारे कल्चर ने क्या दिया कि सिर्फ खुश रहना है तो शादी से पहले रहना है, बस या साथ रहेंगे या साथ मरेंगे। और आप बताइए, जब हम वो चीजें देखें, अब हमारा माशरे में उसका असर क्या आएगा? कोई एक मंजर आपकी आंखों में हो, आप सोचिए कि जो हरकतें एक हीरो हीरोइन के साथ करता दिखता है, चले कोई शादीशुदा ही कपल दिखा देते हैं, कभी कभी वो भी दिखाते हैं वो, क्योंकि बाद में तलाक करानी होती है, फिर ही कहीं और जाके वो लगेगी ना। वादा और शादी इसलिए कराते हैं कि अब शादी के बाद उसको मियाँ का दोस्त पसंद आ गया, उसको बीवी की सहेली पसंद आई है, करानी तो पड़ती है। अब शादी के बाद जो हरकतें वो करती हुई देखते हैं, कभी आपकी ज़िंदगी में आपके मियाँ ने आपसे की, किसी के मियाँ ने उसके बालों में नाचते कूदते फूल लगाया, आप बैठे, आप सोचे आप बैठे एकदम आके एक बंदा उछले कूदे फिर यहाँ आके स्लाइड पे चढ़ जाए, आपको कैसा लगेगा? आप इमेजिन तो करें, यानी जो कल्चर दिखाते हैं, फिर वो डालियों को पकड़ के नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, उसके पीछे आगे पीछे, ये कभी आपने देखा अपनी खाला को, खाला और खालू को देखा, ऐसे मामू मामी को देखा? आप किस दुनिया में जीते हैं? फिर आप कहते हैं इससे कुछ नहीं होता, एंटरटेनमेंट है, चलो जहन की तफरी है, इतना थके हुए आते हैं थोड़ा सा देख लें, और कहते हैं जो ये ना करे वो शादी ना काम है। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह कितनी कामयाब शादियां, शायद ही कभी ज़िंदगी में किसी ने किसी खास मौके पे तोहफा भी किसी को दिया हो। आज यहाँ इसीलिए आवाज़ें आ गई कि 14 फरवरी के बाद तलाकें बहुत होती हैं। क्यों होती हैं आपको पता? क्योंकि वैलेंटाइन गुजरता है और मियाँ ने बीवी को फूल नहीं दिया, कहती तुम्हें तुम्हें एनर्जी नहीं आते शौहर बनने के, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अब आप बैठे हुए, फिर देखिए किस तरह किडनैप हो गए, यानी मेंटली बिल्कुल किडनैप्ड मुस्लिम है इस वक्त हम। गैरों की बात ना करें, सिर्फ अपने औसत दर्जे के, हम जो बेचारे ना आगे के ना पीछे के, ना हमें मॉडर्न लोग कबूल करते हैं ना हमें दीनदार लोग कबूल करते हैं, हम बीच के जो इधर भी धक्के खाते उधर भी खाते। आप अपने ऊपर लें कि घरों में कई घंटों बाप बेटी बेटा पूरी फैमिली बैठी हुई है और टीवी पे क्या चल रहा होता है, क्या मटक मटक के चलता हुआ दिखाते हैं। आप जरा एक लम्हे के लिए सिर्फ इमेजिनेशन पे लाइए कि जो टीवी की स्क्रीन में हो रहा है वो रियल में आपके घर में होने लग जाए। आप बैठे में घर का दरवाज़ा खुले, पहले एक औरत आए अंदर, फिर बड़ी चाल चल के मचकती हुई दिखे, आप कहेंगे ये कौन है, फिर वो अपना दुपट्टा साइड पे रख दे, फिर उसके बाद वो अपने बाल खोले, फिर घूमे, फिर अपने कपड़े लहराने शुरू कर दे, आपको कैसा लगेगा? तो जब इस मंज़र को हम स्क्रीन पे देखते हैं तो हम कहते हैं वाह क्या खूबसूरत बात है। अल्लाह ताला कहते हैं इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशी अल्फाखिशतु फिल्लज़ीना आमनू, और मुसलमानों को फुर्सत ही नहीं, वो तो खुद ला के देते हैं बच्चों को ऐसी चीज़ें कि देखो और हमारी जान छोड़ो, हमने अभी दूसरी जॉब पे भी जाना है, अभी तो हमारी एक और पार्टी है, अभी तो हमने नाइट डिनर में जाना है, अभी तो आज मिडनाइट पार्टी है और आज रात को तो महफिल मौसिकी भी है। जब आप इस किस्म की गंदगी को देखेंगे, आप देखिए इतने फफोले हैं, मैं इस वक्त बात नहीं करना चाह रही, इसलिए मेरी आदत है मैं स्टेप्स में करती हूँ, मैं इस मौजू पे बात ही नहीं करना चाह रही, ये सिर्फ खुद ही बातें मुंह में आती जा रही हैं। आप जब महफिल मौसिकी के नाम पे रातों को लोगों को जगाएंगे, और बड़े लोग कह के, बस दफ़ा आप देखिए अच्छी कॉज के लिए लोग फंड रेजिंग करते हैं और उसके अंदर कोई गज़ल की प्रोग्राम है, महफिल मौसिकी, और वहाँ टेबल बुकिंग होती है, एक टेबल आप स्पॉन्सर करें एक आप करें, हज़ारों के टिकट बिकते हैं सिर्फ ऐसे कॉन्सर्ट्स के कि जिसके पैसे बाद में जलसला जदगान को जाने हैं, अल्लाह ना करे उस जगह पे जलसला आ गया तो क्या होगा। ये तो ऐसे ही है कि कोई कीचड़ वाले पानी से नहा के वजू करना शुरू कर दे। अल्लाह ताला कहते हैं कि बंदे को समझ होनी चाहिए। अब आप जब ऐसे काम करेंगे, हर लम्हे हर तरफ ऐसी चीज़ें करेंगे, तो उसका नतीजा क्या होगा? कोई अच्छी खैर तो नहीं निकलेगी। हमें समझ नहीं आ रही कि हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, हमें नहीं समझ आ रही हमारे मर्द किधर जा रहे हैं, और हमें अपनी अब औरतों और बच्चियों की भी समझ नहीं आ रही। उसकी वजह यहाँ लगी है कि गौर करो, वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहू, अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो माँ ज़का कोई ना बचता तुम में से, मिनकुम मिन अहदिन अबदा। वो उन्होंने तो एक एक बंदे को हिट पे रखा हुआ है, वो तो लगे हुए हैं करना है। अगर आप कहते हैं कि वो कहते हैं जी गुनाहों को आम करें तो पता चले दुनिया में हो क्या रहा है, नहीं आम करना है ना, तो गुनाह के साथ साथ उसकी कशिश भी, उसकी सज़ा भी आम कीजिए। इस्लामी सज़ाओं पे तो आप बैन लगा देते हैं, बात ही ना करो। जिना को आप खूबसूरत करके दिखाते हैं, आप हर जिना के सीन के बाद फिर दिखाएं ज़रा कि इसका इंजाम क्या है। अब देखिए कि इंजाम का जो खौफ होता है ना, ये कशिश पर गालिब आ जाता है। याद रखें, जिस चीज़ में कशिश होती है ना, उसके बाद उसके अंदर अगर हमें महसूस भी हो जाए ना कि इसके बाद हम बीमार हो जाएंगे, मतलब पानी है साफ़ है, हर एक उसमें कशिश है, पीने को दिल चाहता है, हल्का सा शक पड़े ना कि इस पानी के अंदर जहर मिला हुआ है, तो क्या उस पानी में कशिश रहेगी? आप कभी नहीं पियेंगे। इसी तरह बेहयाई न्यूडिटी किसी मुआशरे के ज़ख्म है, इनके अंदर से पस निकलती है। ऐसे लोग मुआशरे को बीमार करने वाले होते हैं, ये सांप के डसे की तरह के लोग हैं। आप कभी फील करें कि खुदा न खास्ता किसी को अगर कोई सांप डस जाए तो क्या करते हैं? एक छोटी सी मिसाल देती हूँ ताकि आप इस बात को फिर प्रैक्टिकल भी देखें ना, हम भी सिर्फ बातें ही ना करके चले जाएं, हम भी इसका कोई हल ढूंढें। आप खुदा न खास्ता किसी को अगर कोई सांप बाइट करे ना, आप कहते हैं सबसे पहले क्या करते हैं? कोई कपड़ा, कोई रस्सी, कोई डोरी पकड़ो, जल्दी से टाइटली बांध दो। भला क्यों? ताकि उसका जहर बाकी जिस्म में ना जाए। अगर उसका जहर पूरे जिस्म में फैल गया फिर नहीं बचाएंगे। हाँ, आप तो बाजू कटेगा, हाथ कटेगा, फिर पूरा जिस्म कटेगा। आइसोलेट करते हैं, यही है इस फहाशी के जहर से निपटने का इंजाम, कि इसको आपको अपने आप से अलग कर दें। जो लोग हर घर पे लाना चाहते हैं ना इस जहर को, आप उसको आइसोलेट करें। इसे कंटेन करने की ज़रूरत है, तशखीर की नहीं है। हम इसको और खूबसूरत करके पेश करते हैं, पब्लिसाइज करते हैं, करने की क्या ज़रूरत है कि आप लोगों को दिखाएं कि ये इसका अंजाम बुरा है। आज लोग एड्स का रोना रोते हैं, उसके आगे से इलाज की कोशिशें बहुत होंगी, ऐसे विक्टम्स जो हैं उनके लिए बहुत सारे होम्स होंगे, ये वजह नहीं समझते कि एड्स होता क्यों, उसको आम करने की ज़रूरत है। एक तरफ कोई डसवाए और दूसरी तरफ वो एंटी सीरम डालता जाए ऊपर के जहर का असर ना हो, तो क्या फ़ायदा होगा? आज क्यों कोशिशें बेकार हैं? इसकी वजह यह है कि लोग इन चीज़ों को ख़त्म तो नहीं करना चाह रहे, लेकिन आगे से तोड़ करना चाहते हैं। ये ऐसे जैसे कोई पीछे से टैब ना बंद करे और आगे से बाल्टियाँ भर भर के रखता जाए कि मैं इस पानी को कहाँ संभालूँ। पीछे से सोर्स ढूंढिए, कहाँ से ये सोचें आती हैं, कौन ये बनाता है, किन ड्राइंग रूम्स में बैठ के ये प्लान बनते हैं, कौन से मीडियाज़ हैं, कौन सी चीज़ें हैं जहाँ ये होते हैं। और तो हिस्ट्री को देख लें, आज की बात नहीं है, हिस्ट्री को देख लें। बस खैरुल करून करनी और उसके बाद दूसरे करन, यानी ताबईन और तबा ताबईन के दौर को ले जाए, उससे नीचे से लेके आज आप बरेसगीर पाको हिंद तक की हिस्ट्री को एक स्ट्रेच में पढ़ लें। हर मुसलमानों की उम्मत के जवाल की वजह फहाशी थी। जब दासियां आ गईं, जब वहां औरतें आ गईं, जब तवायफों के बादशाहों के साथ ताल्लुकात हो गए, उस वक़्त मुसलमान जो थे वो गिरना शुरू हो गए। कोशिशें लोग पहले भी करते थे, ये इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना वाली कैफियत ये सहाबा के दौर में भी थी। तारीख़ का एक वाक़या है कि एक मौके पे मुसलमानों का फ़ौज जो थी वो तैयार थी लड़ने के लिए और बहुत अच्छी तरह लड़ रही थी, दुश्मन को हार हो रही थी। दुश्मनों ने सोचा कि क्या वजह, ये डरते ही नहीं, पकड़ें कैसे इनको? लोगों ने कहा कि देखो ये गोलियों से नहीं डरते, ये मौत से तो डरते ही नहीं है, इनको किसी और वार से पकड़ो। कहा क्या करो? कहने लगे कि रूमी औरतें बड़ी खूबसूरत होती हैं, ऐसा करते हैं कि जहाँ से इनके सिपाही गुजरते हैं रास्ते में ऐसी तवायफों को रखते हैं जो अदाएँ और लाड दिखाएं और इनको अपने घरों में ले जाएं, ना ये फौजी होंगे ना लड़ेंगे। ये बात उनको बड़ी अच्छी लगी, प्लानिंग हो गई। अब ये खबर मुसलमानों के लीडर तक भी पहुँच गई, जंगों में CID तो होती है। अब उन्होंने ना कोई कियोस बरपा किया, हाय दुआएं नहीं की, उन्होंने अपने फौजियों को सबको जमा किया, कहने लगे देखो अल्लाह के नाम पे लड़ने जा रहे हैं ना, तो ज़रा अल्लाह की किताब भी पढ़ लेते, थोड़ी सी बात पढ़ते हैं, कहा चलो जी बिल्कुल, क्योंकि उनको यकीन था कि हमें फतह होगी तो अल्लाह और उसके रसूल की बात को मान के होगी। जान के नहीं फतह होती, याद रखें, अल्लाह और रसूल की बात को जानकर फतह नहीं होती, उसको मानकर फतह होती है। जानते तो आज भी हम बड़े हैं जो कई सालों से पिस रहे हैं, मानते कम है, इताअत नहीं करते, तभी तो अल्लाह तआला कहते हैं मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा। किस्सा मुख्तसर, उन्होंने सूरत नूर खोली और अगली ही आयतें जो अब इन आयतों के बाद वाली हम पढ़ने वाले हैं उनको अपने फौजियों के साथ हल्की हल्की बता दी कि कुल लिल मोमिनीन यगुद्दु मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम, कह दीजिए ईमान वाले मर्दों को कि अपनी निगाहों को झुका लें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, और साथ ही कह दिया कि ज़ालिका अज़्का लहुम इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनाउन, कि ये तुम्हारे लिए ज़्यादा पाकीज़ा तरीक़े और जो कुछ वो करते हैं अल्लाह ताला उससे बाखबर है। ये आयत बताई, साथ ही बता दिया कि भाई उम्मत मुस्लिमा के मर्दों का ये हुक्म है कि बिला ज़रूरत निगाहें ना उठाएं और औरतों को निगाहें फाड़ फाड़ के देखने का हुक्म नहीं, मुतलकन देखना मना नहीं। बहरहाल उस आयत पे इसके मसाइल हम बात कर लेंगे, यहाँ तो सिर्फ इशारतन बात हुई। उन्होंने कहा ठीक है, कुछ नहीं कहा, कहा चलो चलो चलते हैं। और उस दौर में जंगें भी एक जाब्ते के साथ होती थी, वक्त पे शुरू होती थी, मैदान जंग बरपा हुआ, वो औरतें प्लान के मुताबिक उन्हीं रास्तों में थी, वहीं से फौजी गुजरे, किसी ने नज़र नहीं उठा के देखा, सीधे गए मैदान जंग में और उन औरतों की साजिश नाकाम हो गई। बेदर्दी से लड़े, जब मुसलमान फतह पा चुके तो वो तवायफों का गिरोह मुसलमान कमांडर के पास आया, कहने लगी कि एक बात बताइए कि आपने अपने फौजियों की कैसे ट्रेनिंग की है, आज तक हमारे वार से कोई नहीं निकला, हमारा हुसन ऐसा है लेकिन इन्होंने तो हमें नज़र भर के नहीं देखा। कहा अच्छा क्या हुआ, बता दिया ये चीज़ थी और इन्होंने तो हमें देखा नहीं। कहा अच्छा बस कुछ नहीं, आज सुबह बस एक कुरान की आयत इनको पढ़ाई है, हो सकता है उस पर अमल कर लिया होगा। अच्छा कौन सी आयत, ये दिखा दी। कहा अच्छा तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल, पूरा तवायफों का गिरोह मुसलमान हुआ। कहने लगी कि वो दीन कितना खूबसूरत होगा जिसकी सिर्फ एक आयत ने इतने बड़े फितने के आगे बंद बांध दिया। तो असल बात क्या है कि जब मुसलमान अपनी किताबों पे अमल करते हैं तो उनको खुद ब खुद समझ आ जाता है कि ये कैसे अमल की चीज़ें हैं, जिनकी रातें अल्लाह के साथ ताल्लुक़ में गुजरती थी और दिन को वो दुश्मनों से लड़ते थे, रोहबान फिल्लैल व फोरसान बिन नहार का एक लकब मिला था एक दूसरी जंग में मुसलमान सिपाहियों को, उनको फतह मिलती थी। लेकिन उसके बाद से दिन ब दिन शैतान ने हर दौर में मुसलमानों को गिराने के लिए औरत को इस्तेमाल किया, हत्ता कि आज तो औरत को औरत रहने ही नहीं दिया। पहले ये काम छुप छुपा के होते थे, शहरों से बाहर कोठे बनते थे, शहरों से बाहर ऐसी औरतों के डेरे होते थे। जिस मौके पे आयतें उतर रही थी उस दौर में भी ये रिवाज था। अब्दुल्ला बिन उबई का बिजनेस था तवायफों को बेचने का और उनसे जिस्म फरोशी करवाता और उनकी कमाई खाता, अगली आयतों में उसका तस्करा आएगा। इस्लाम ने कहा नहीं, इससे फ़ायदा नहीं होगा, ये तो गंदगी है, ये ऐसी चीज़ें हैं जिन लोगों को मुसलमान मुल्कों के अगर गटर बुरे लगते हैं तो उनको बाहर के मुल्कों के फहाशी वाले गटर क्यों नहीं नज़र आते, वहाँ अखलाकी गंदगी क्यों नहीं दिखती, और कोई अखबार नहीं बिकता जब तक औरत को उसके अंदर पेश ना कर दिया जाए। किसी का गुनाह किसी ने कहीं किया, ढका था छुपा था, उसको लाके दिया। आज की येलो जर्नलिस्ट क्या है, सिर्फ स्कैंडल्स को आम करने का नाम है ना, कभी सियासतदानों की खबरें, कभी लीडरों की खबरें, कहीं बादशाहों और शहजादों की खबरें। तो ज़रूरत है इस बात की कि ऐसी चीज़ों को यहीं रोका जाए, फिर इसके मुआशरती असरात जो हैं वो कम होंगे। जितना इस चीज़ को हम अपने अंदर रखेंगे उतना ही आप फील करेंगे कि इस चीज़ से हम बचते जाएंगे। और अगर आप इसका दूसरा पहलू कर लें बात, इनफरादी पहलू, किसी एक इंसान की अपनी ज़ात में क्या असर होता है इस फहाशी का, तो याद रखें कि इसके बाद अल्लाह से ताल्लुक़ कमज़ोर हो जाता है। जितना आप फुहश में पढ़ेंगे आपकी नमाज बेरंग हो जाएगी, फीकी, पढ़ के भी नहीं पढ़ी हुई। सूरत कसस में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं इन सलात तनहा अनिल फख्शाई वल मुनकर वल ज़िक्रुल्लाह अकबर, बेशक नमाज तो फहाशी और मुनकर से रोकती है और अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज़ है, ये ड्यूल है। नमाज जैसे बेहयाई और बुराई से रोकती है ना, इस तरह बेहयाई और बुराई नमाज से भी रोकती है। ज़िंदगी में अगर आपके फुहश है ना, अगर आप गाने सुनते हैं ना फुहश, या दूसरे या म्यूज़िक सुनते हैं, तो लिख लें कि आपको कभी कुरान से मोहब्बत नहीं होगी। जुल्म की हद है कि आप एक कान से कुरान सुन रहे हैं तो हो सकता है अगले ही लम्हे मौका मिले तो दूसरे कान में आपने गानों का हेडफोन लगाया हो। दिल की सख्ती की अलामत है। कुरान नहीं दिल में आ सकता जब तक आप गाने को अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालते।